اللهم صل على محمد وعلى مؤمنین. آج سے سورہ طہٰ کی شروعات ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے بحق محمد وعلی طاہرین اس کی تفسیر پوری کرائے, اور جو بھی اس میں غلطیاں ہوں اللہ سے درگزر کرے. تو پہلی آیت ہے طہٰ, یہ حروف مقطعات ہیں, جدا جدا لفظ جو آئے ہیں توا اور ہا. اس کے بارے میں الگ الگ ہیں حدیثیں, بعض روایتوں میں کہ توا سے مراد جو کہ حق کو ڈھونڈنے والا ہے, اور ہاں سے مراد ہے جو کہ اس کی طرف حق کی طرف لے کے جائے. جو کر کے اللہ نے پکارا ہے وہ پکارا ہے ختمی مرتبت کو, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو طہٰ کے نام سے پکارا ہے. دو مشہور نام ہیں ان کے حروف مقطعات سے, ایک طہٰ اور ایک یاسین, یہ بھی یا اور سین. تو یہ تھے تو سمبولک تھے, لیکن اتنا پکارا گیا کہ وہ ان کے پراپر نیم ہو گئے. اب طہٰ سے سرکار طہٰ کے بھی پکارا جاتا ہے, یاسین کے بھی پکارا جاتا ہے. اسی لیے ہم جب آل محمد بھی کہتے ہیں, اور آل طہٰ بھی کہا جاتا ہے آل محمد کو, کیونکہ نام ہو گیا, ان کا نام پڑ گیا. حالانکہ شروع ایسے ہوا تھا, جدا جدا لفظوں سے شروع ہوا تھا, سمبالک تھے, لیکن وہ واقعی میں پراپر نیم ہو گئے سرکار کے. یا اگر ہم سورہ ندوہ پڑھتے ہیں تو امام زمان کو کہتے ہیں یبن طہٰ, یبن طہٰ مطلب یہ سرکار کی فرزند ہی نو. تو اس طریقے سے ہو گیا, اتنا زیادہ اس کا استعمال ہوا کہ سرکار کے نام پڑ گئے. تو طہٰ کے بارے میں اس طرح سے کہا گیا ہے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ, ہم نے قرآن کو آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ آپ اتنی ہی مشقت برداشت کریں. مشقت برداشت نہ کریں آپ, تو قرآن ہم نے نازل کیا ہے لیکن آپ مشقت میں نہیں پڑ جائیں. بعض اس کا ترجمہ یہ کرا ہے مشقت کا کہ آپ ناکامیاب نہ ہو جائیں, یہ بھی ترجمہ ہے. میزان نے بھی ترجمہ کرا ناکامیاب نہ ہو جائیں, بعض نے کرا کہ مشقت میں نہ پڑ جائیں. تو اس کے اندر بھی دو طرح کی آئیڈیالوجی ڈیولپ ہوئی ہے. ایک آئیڈیالوجی کی اس سے مراد یہ ہے کہ سرکار رات رات بھر نمازیں پڑھا کرتے تھے. قرآن نازل ہوا نا سرکار پہ, تو رات رات بھر نمازیں پڑھتے تھے, تو ان کے پاؤں سوج جاتے تھے. تو بعد میں اللہ نے منع کرا کہ اتنا نہیں پڑھا کرا کرتا. تو اس سے مراد یہ کہا گیا ہے کیا ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کرا کہ آپ رات رات بھر عبادتوں میں اپنے آپ کو تکلیف دے دیں. لیکن جو میزان نے جو بات کری ہے بڑی گہری کری ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے قرآن تم پہ نازل تو کیا ہے, لیکن اب تمہاری یہ ذمہ داری نہیں کہ ہر ایک اس پہ ایمان لے آئے گا. تم کیوں پریشان ہوتے ہو, اپنے آپ کو کیوں پریشانی میں ڈالے ہو کہ بھائی ہم نے تم کو کسی پہ کوئی دروغہ بنا کر تو نہیں بھیجا نا, تم خبر پہنچانے والے. سرکار وہ رنجیدہ ہو جایا کرتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھانڈس دلائی ہے. اللہ تذکر لمن یخشا, یہ تو ایک طرح کی یاد دہانی ہے خوف رکھنے والوں کے لیے. پھر اللہ نے آگے اس بات کو مکمل کیا ہے کہ تم مشقت میں مت پڑ جاؤ. اللہ تذکر لمن یخشا, یہ صرف تذکرہ ہے, یہ صرف یاد دلانا ہے, ریمائنڈ کرانا جس اس کو جو کہ خوف رکھتا ہے. تو تم کیوں مشقت میں پڑ رہے ہو بھائی؟ جو خوف رکھتا ہے وہ تو دھیان دے گا, جو خوف نہیں رکھتا وہ دھیان نہیں دے گا. خوف کس بات کا ہوتا ہے انسان کو؟ سب کو معلوم اس کا ایک پروردگار ہے, خالق نے اس کو بنایا ہے, ایک دن اس کے پاس کوئی جانا ہے. یہ ہماری روم ہے سب کے, تو وہی ہر ایک کی روم میں بیٹھی ہوئی ہے کہ میرا مالک ہے مجھے جانا ہے. مشرک سے پوچھنا بولے گا سب کا بھگوان ایک ہے, ایشور ایک ہی ہے, اس کے پاس جانا حساب دینا ہر ایک کو معلوم ہے. لیکن کیا شیطان اس بات کو ڈھانپ دیتا ہے اور یہاں کے فتنے لے کے یہ کر کے اس کو دنیا میں غافل کر دیتا ہے, اور اس طریقے سے پھر उसमें शुरका भी आ जाते हैं, शुरका भी आ जाते हैं, तो सब मिल मिला के वो आखिरत से गाफिल हो जाता है, वो दुनिया की मौज मस्ती में पड़ जाता है। तो ऐसे शख्स को फिर आप कुरान समझाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो तो दुनिया में लगा हुआ है। अल्लाह ने कहा तुम क्यों मशक्कत में पड़ रहे हो, ये सिर्फ तस्करा उसके लिए, रिमाइंडर उसके लिए जो कि खौफ रखता है कि उसको अपने परवरदिगार के आगे हाजिर होना है। और वाकई में हम अगर कुरान देखें तो कुरान के अंदर दो तरह की आयतें, खौफ की आयतें भी और खुशखबरी की आयतें भी हैं। खौफ की आयतें ज़्यादा हैं, खुशखबरी की आयतें कम हैं। अल्लाह हकीम है, अल्लाह जानता है कि हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद है, मालूम कि हमारा नफ्स कमबख्त है, दुनिया में डूबा रहता है। जब तक खौफ नहीं होगा इंसान सुधरता नहीं है। तंजील मन खलकल अर्ज़ व समावादी औला, ये उस हस्ती की तरफ से नाजिल हुआ है जिसने ज़मीर और बुलंद आसमानों को खल्क फरमाया है। अल्लाह ताला अपना तारुफ करा रहा है कि ये जो कुरान की जो बात कर रहा हूँ तो मैं कौन कौन बात कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ। तो कहा कि तंजील हुआ है, जो नाजिल हुआ है, तंजील से मुराद ये कि धीरे धीरे नाजिल हुआ है, हल्के हल्के नाजिल हुआ, हल्के नाजिल, नाजिल हुआ मतलब ऊंचाई से नीचे की तरफ नाजिल हुआ है। अल्लाह ताला का अर्श आला तर है, बुलंद तर है, हम लोग पस्त हैं, ज़मीन वाले पस्त लोग हैं। और तंजील हुआ तो धीरे धीरे नाजिल हुआ है, 23 साल में नाजिल हुआ है। और फिर अल्लाह ताला ने तारुफ कराया है कि मन खलकल अर्द व समावादी उला, जिसने के तुम्हारी ज़मीन बनाई और ऊँचे ऊँचे आसमान बनाए है। इसलिए जब भी कहते हैं दुआ मांगो तो आसमान तरफ अपनी मुँह उठा लिया करा करो, ताकि अल्लाह की बुजुर्गी याद आए तुम्हें, अल्लाह की बुजुर्गी। जब आप बाहर निकलते हो आसमान की ऊंचाई देखते हो तो अल्लाह की बुजुर्गी याद आती है, अल्लाह कितना बुजुर्ग आला है। जब आप अपने आप को कितने बड़ा सरकश समझ लें, फिरौन समझ लें, आप बाहर निकल के आसमान तरफ देखेंगे तो आप अपने आप को बहुत हकीर समझेंगे, ज़मीन की तरफ देखेंगे तो हकीर समझेंगे कि कल हमको इसको ज़मीन के अंदर जाना है। ये हमारी औकात है, और ये जब अल्लाह की बुलंदी दिखती है आसमान पर तो आदमी अपने आप को वाकई हकीर समझता है कि वाकई में कुछ भी नहीं हो। अर्रहमानो अलल अर्शी इस्तवा, रहमान ने अर्श पर इक्तदार कायम कर रखा है। पहले तो अल्लाह सुबहान तआला ने क्या कहा कि जिसने के जमीन और ऊंचे ऊंचे आसमान बनाए, उसके बाद क्या अपने आप को रहमान कहा अल्लाह ने, अर्रहमानो अलल अर्श इस्तवा, वो रहमान जिसका के इक्तदार अर्श के ऊपर है। तो क्या मतलब है, अर्श से क्या मुराद है, इख्तदार से क्या मुराद है? इख्तदार से मुराद ये है, मासूमीन फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का जो इख्तदार अर्श पे है उसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला की हुकूमत आसमान और ज़मीन सब तरह उसकी हुकूमत है, उसकी अथॉरिटी है, उसकी ये मिल्कियत भी है और उसकी हुकूमत भी है। दोनों काम अल्लाह करता है इस ज़मीन के अर्श, कोई किसी कुर्सी का नाम नहीं है कि वहाँ कोई होगी कुर्सी और वो अर्श है, ये बिल्कुल नहीं। जैसे हम जब बादशाह को कहते हैं कि बादशाह एक थ्रोन पर बैठा हुआ था, एक अर्श पर बैठा था, तो हमको मान लो कि बादशाह उस थ्रोन के अंदर बैठता है और वो उसके लिए मजबूर होता है कि थ्रोन हो तो बैठेगा, वो मजबूर होता क्योंकि उसका एक फिजिकल शेप है। अल्लाह के साथ ऐसा नहीं कि एक थ्रोन होगा तो अल्लाह उस थ्रोन में बैठेगा, क्योंकि अल्लाह का कोई जिस्म नहीं है। तो जब उसका जिस्म नहीं है तो कोई ऐसा फिजिकल अर्श नहीं है। इसका मतलब ये है, अर्श से मुराद है कि उसका इख्तदार है, उसका इख्तदार पूरी कायनात पे है और वो उसका मालिक भी है, उसकी मिल्कियत भी है और वो उसका पूरा कंट्रोल करता है, इंतजामात आसमान जमीन के सारे इंतजामात वो ही करता है। वो इन तजहर बिल कौली फ़इन्नहु यालमु सिर्र व अख्फा, और आप चाहें जो अगर तुम पुकार के बाद कहो तो भी बेशक वो तुम्हारे राजों और मख्फी बातों को भी जानता है। या करीम, तो अब अल्लाह क्या बताना चाह रहा है, अपनी हुकूमत बताना चाह रहा है। एक हुकूमत उसने ही बताई कि उसने आसमान और ज़मीन बनाए। अगली आयत में अल्लाह सुब्हानहू फरमाता है लहू मा फिस समावाती व मा फिल अर्दी व मा बैनहुमा व मा तहत थरा, जो कुछ आसमान और जो कुछ जमीन में और जो कुछ उनके दरमियान में है और जो जमीन के नीचे है वो सब अल्लाह की मलकियत है, अल्लाह सुब्हान व तआला कहता है। जब उसने कहा कि मेरा अर्श है और मेरी हुकूमत है, अब उसने उसकी हुकूमत ही बताई, हदूद क्या है, हदें क्या है उसकी, बता रहा कि मेरा अर्श जो है उस वो कहाँ कहाँ पर जा रहा है, मेरी हुकूमत कहाँ कहाँ है। क्या अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाया, लहू मा फिस समादी व मा फिल अर्द, जो कुछ आसमान और जमीन में वो माँ भाई ना हो माँ, और जो कुछ उसके बीच में, अल्लाह ताला ने कुछ भी छोड़ा, जो कुछ आसमानों में, जो कुछ जमीन और जो कुछ उसके बीच में, वमा तहत फरा, और जो जमीन के नीचे, जो जमीन के पेट के अंदर, सब कुछ मेरा है, कहीं अल्लाह ने नहीं छोड़ा। सुबहान अल्लाह, ये अल्लाह ताला ने कहा कि मेरी हुकूमत है, ये मेरी हुकूमत। आप दूसरी सूरह पढ़े, भला अगर आप सूरह हदीद पढ़े तो मालूम पड़ता है कि अल्लाह जो कुछ आसमान से जमीन पर उतरता है वो जानता है, जो जमीन से ऊपर आसमान को जाता है वो सब को जानता है। अब कुरान में आप पूरे देखें, अल्लाह ताला ने कुछ भी नहीं छोड़ा है, क्या कहाँ उसकी हुकूमत नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ा अल्लाह सुब्हान ताला ने। आप जो दिमाग में लेना चाहेंगे, क्या यहाँ अल्लाह की हुकूमत नहीं है, हर पे आयत है, ये भी नहीं छोड़ा है। माँ के पेट ने शिगम के बढ़ने घटने सबकी ऊपर आयत है, बढ़ता घटता है फीटस सब पे आयत है। सूरह रात पढ़ लें आप, कहीं कुछ नहीं छोड़ा। दिन के उजाले में बात करो या रात के अंधेरे में या छुप के बात करो, अल्लाह सब जानता है। ये भी सब सूरह रात में लिखा हुआ है, मतलब उसकी हुकूमत कहीं नहीं छूटी हुई। आप कुछ तो भी सोचते रहे, आप अभी और आयत आएंगे इस बारे में। तो ये अल्लाह ताला की हुकूमत है। फिर उसी बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि मेरे इंतजाम कहाँ कहाँ जाते हैं, वह इन तजहर बिलकौली फ़ैन्नहु यालमु सिर्र वमा अख्फा, और अगर तुम पुकार के बात कहो तो भी बेशक वो तुम्हारे राजों और मख्फी बातों को भी जानता है। अल्लाह ताला ने क्या कह दिया, अब बताए उसने हुकूमत, पहले तो कहा आसमान ले लो, जमीन ले लो, जमीन आसमान के बीच की बात ले लो, जमीन के अंदर की बात करो, अब सुन लो तुम, अगर तुम पुकार के बात करो तो वो भी मैं जानता हूँ, और तुम राज बना के छुपा के रखो वो भी जानता हूँ, और मख्फी रखो वो भी जानता हूँ। अब तीनों में फर्क है, पुकार के आपने बात कह दी, कर दी कि पुकार की बात हो गई, अब आपने रात छुपा के चुप बैठे हैं खामोश, अब वो भी जान रहा है वो। तीसरी बात मख्फी, वो मख्फी क्या होती है, मख्फी बात होती है, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, दुरूद पढ़ते हैं अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, राज तो मालूम है, मतलब राज वो होता है जो तुम नहीं बोलो, वो राज सर है ना, सर आया राज, आपने मुंह बंद कर लिया, मालूम आपके दिल में क्या है, वो हुआ सर। वह अख्फा मख्फी, मख्फी होती कि आपके दिमाग में कोई बात आई थी, दिमाग में आई थी पर आप भूल गए उसको, वो भी अल्लाह जानता है कि आप क्या भूल गए, पहले आके बैठे थे आप, ये इमाम ने कहा कि वो भी अल्लाह जानता है, ये अल्लाह की हुकूमत है, ये अल्लाह की हुकूमत है, ये अल्लाह के रेगुलेशंस हैं। हम क्या क्या चक्करों पड़े हैं, अल्लाह ताला कितनी गहराई करता है। हम थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना के बहुत बड़ा अपने आपको इस बात का समझते हैं कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना लिया कंप्यूटर पे, अल्लाह कह रहा तुम जो भूल गए वो भी मुझे मालूम है। अल्लाह अकबर, इसलिए हमको चाहिए कि इस्तिगफार करते रहें अल्लाह सुब्हान व तआला से, वो वसवसों से बचें। अल्लाह अगर वसवसों से नहीं बचाएगा तो हम नहीं बच सकते। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना जरूरी है, वरना शैतान का वार हमारे बस का नहीं है बर्दाश्त करना। इसलिए जब भी वसवसे हो, क्यों अल्लाह तो मख्फी जान रहा है ना, हम तो क्या भूलो वसवसों के शिकार में हमने क्या क्या नहीं सोच लिया था, हम क्या हिसाब देते बैठेंगे अल्लाह सुब्हान व तआला को, जो भूलो हम वसवसों में क्या क्या सोच के बैठे हुए थे। इसलिए हमेशा इस्तिगफार और आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते रहना चाहिए इंसान को। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा लहुल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह वो है कि उसके अलावा कोई माबूद नहीं, सारे बेहतरीन नाम उसी के हैं। अल्लाह सुब्हान अल्लाह ला इलाहा इल्ला, अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है, लहुल अस्माउल हुस्ना, सारे अच्छे नाम उसी के हैं, सारे अच्छे नाम उसी के हैं। उसके जो नाम है उसकी सिफात है, एट्रीब्यूट्स, उसके जो नाम है उसकी सिफात एट्रीब्यूट्स, आलिम हाई आदिर, ये उसके एट्रीब्यूट्स है ना, कि आलिम है तो वो सब चीज़ जानता है, कुछ भी नहीं छूटा उससे, हाई है तो ऐसा हाई है हमेशा जिंदा रहने वाला है, आदिर जो चाहे कर दे, ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं, और उसके एट्रीब्यूट्स सब अच्छे एट्रीब्यूट्स हैं और परफेक्शन पे हैं, उसके एट्रीब्यूट्स अच्छे हैं और परफेक्शन पे हैं, उसमें है ना कोई अपने कमाल की हद कोई उसकी लिमिट ही नहीं उसकी। अब वो आलिम है, कितना आलिम कोई नहीं जानता, वो आलिम है कितना बड़ा आलिम कोई नहीं जानता, वो उसी को मालूम है वो क्या कितना बड़ा आलिम है, वो हाई है तो कैसा हाई है वो ही जानता, कब से आया कब तक चलेगा उसी को मालूम है, कोई नहीं, कोई भी नहीं जानता, कोई नहीं जानता, मतलब कोई भी नहीं जानता कि मतलब मासूमीन कहते हैं हमको भी नहीं मालूम भाई कि कब से आया हमारे किसी को नहीं मालूम कब तक, ये सिर्फ अल्लाह को का इल्म अल्लाह के पास ही है, कोई नहीं जानता। उसके जो नाम है वो भी उसकी मिल्कियत है, अलग नहीं है उसके नाम, वो जैसे जमीन और आसमान की मिल्कियत उस तरह उसके उसकी जात की मिल्कियत है वो नाम, वो उसकी जात से नाम जुदा नहीं है। सारे नाम उसकी शान बताते हैं, ये सारे नाम उसकी जात बताते हैं, असल चीज वो उसकी जात है। अगर उसके नामों में और उसके जात में फर्क करोगे तो आप एक तरह से मुशरिक हो गए, छठे इमाम फरमाते हैं। तो सारे नाम उसकी जात के आगे हाथ जोड़ते हैं कि सब उसकी उसकी जात बताते हैं, क्योंकि उसकी जात सब चीज को घेरे हुए, उसके नाम को भी घेरे हुए, उसके नामों को भी घेरे हुए। तो इतनी हदीसें सरकार की खत्मी मर्तबे की नामों के बारे में कि अल्लाह फरमाते हैं, बोला मुत्तकान से मनकूल है कि बेशक अल्लाह के नन्यानु नाम है और जो उनके जरिए दुआ मांगेगा उसकी दुआ को अल्लाह कबूल करेगा और जो उनकी गिनती करेगा वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। इसलिए उसके नाम लेना, जन्नत चले जाओगे, उसके नाम लेकर दुआ मांगो, दुआ कबूल होगी, दुआ कबूल होगी। लेकिन तफासिर में जो खूबसूरत बात कही गई है नामों के बारे में, जो उसके नाम है ना, मोमिन के दिल में उसके नाम चमकना चाहिए, चमकना चाहिए, नहीं कि नाम रट के बैठ गए। अगर रहमान है तो आप भी रहमानत पैदा करें, वो आलिम है तो कुछ आलिम आप भी लेके आए, वो वुदू तो आप भी कुछ मोहब्बत दिखाएं, वो कहार है और लोगों से बदला लेने वाला है, तो आप भी अल्लाह के दुश्मनों के साथ इसी तरीके से पेश आए कि आप जिस तरह अल्लाह ताला पेश आता है, आपके अंदर हर तरह के नाम अल्लाह के जो सिफात हैं वो आप अंदर पैदा करें, आप पैदा करें वो। और सबसे बड़ी बात क्या है, मौला इमाम सादिक फरमाते हैं कि वल्ला हम खुदा के खूबसूरत नाम है, हम खुद खुदा के खूबसूरत नाम है, इल्लाल्बेत खुद खुदा के खूबसूरत नाम है, अस्माउल हुस्ना हम खुद हैं। क्यों हैं? क्योंकि वो अल्लाह की सिफात बताते हैं। अगर अल्लाह की रहमानत देखना हो तो सरकार को देख लो, अल्लाह का इल्म देखना है बोला मुत्तकियान को देख लो, बोला मुत्तकियान को देख लो, अल्लाह का देखना है अल तो इमाम जमा का अल देख लेना, इमाम जमा का अल देख लेना, आपको देखना, ये सब अल्लाह की सिफात बताते हैं। और इस सब अल्लाह कहता है मैंने छुपा हुआ खजाना था, खजाना था छुपा, किसने बताया उस खजाने को? अहले बैत ने दिखाया ना। तो सारे अल्लाह के नाम किसको तरफ लेके आते हैं? उसकी जात की तरफ लेके आते हैं। इसी तरह अहले बैत कुछ नहीं करा रहे बैत ने सिवाय अल्लाह की जात दिखाई, इसी तरह वो अल्लाह के नाम है कि उन्होंने अल्लाह की जात को दिखाया, अल्लाह की जात को जिस तरह से चौथी मामले दुआएं मांग के बताई हैं तो हम पागल हो जाते हैं, अल्लाह के इश्क में अल्लाह की जात दिखती है। दुआ नदबा देख लें, या आप दुआ इफ्तिता देख लें, बारह इमाम की जो आप रमजान में पढ़ते हैं, दिखने लगता है अल्लाह सुभान अल्लाह, जिस तरीके से अल्लाह की जात दिखाते हो। अरमान है कि इमाम आए और इमाम के पीछे नमाज पढ़े और इमाम दुआ पढ़ो हम सुने ताकि अल्लाह की जात दिखे। अल्लाह की जात दो तरीके से दिखी, एक तो अल्लाह ने खुद दिखाई कुरान में आयतें भेज के और एक इमाम भेज के ताकि वो दुआ करते थे तो अल्लाह दिखता था। हल अता का हदीस मूसा, क्या आपके पास मूसा की खबर पहुंची? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता है क्या आपके पास मूसा की खबर पहुंची? अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम से बहुत मोहब्बत करी, बहुत मोहब्बत करी अल्लाह सुब्हानहु व तआला, लेकिन उससे ज्यादा मोहब्बत करी हमारे सरकार खत्मी से, ऐसी किसी से मोहब्बत नहीं करी अल्लाह ने। मूसा अलैहि सलाम के पास तो रेत आई, हमारे सरकार के पास कुरान हकीम आया जो कि ता कयामत है। तो अल्लाह सुब्हान अल्लाह फरमाता इद रआ नारन फकाल अली हिल इद रआ नारन फकाल अली हिम कुसु इन्नी आनसु नार लअली आतैकुम मिनहा बिकबसिन औ अजिदु अलन नारी हुदा, इधर आ नारन फकाला ली अहलिहिम कुसू इन्नी आनस्तु नारन लअल्ली आताएकुम मिन्हा बिकबसिन अव अजिदु अलन नारी हुदा। जब उन्होंने आग देखी तो अपने अहल से कहा तुम यहीं ठहरो, मैंने आग देखी है, मुमकिन है मैं उसमें से कोई अंगारा तुम्हारे ले आऊं या आग के पास से मुझे मंजिल का पता मिल जाए। क्या हुआ था, जब अपनी बेगम को जो के प्रेग्नेंट थी, वो हमल से थी, उनको लेके वो मदायन से मिस्र जा रहे थे, तो अपनी बेगम उनके साथ थी, हमला थी, परेशान थे मूसा अलैहि सलाम, और वो जंगल में जा रहे थे, रात में रास्ता भटक गए हो, जान आप कहाँ जा रहे थे, मदायन से शोएब अलैहि सलाम के शहर से जाकर रहे थे, फिर उनके पास जा रहे थे, परेशान थे। क्यों परेशान थे, एक तो बेगम हामला, दूसरा ये कि फिरौन से मुकाबला करना है, तो उस वक्त रात में रास्ता भूल गए, मुश्किल वक्त था ना, मुश्किल थी, अब रात में परेशान और सर्दी अलग के अंगारा के को लेने जा रहे थे ताकि तापें, तो क्या कहा, जब कहा कि तुम ठहरो मैं अभी आता हूँ, इन्नी आनस्तु नारा, मैंने आग देखी है, मुमकिन है मैं कोई अंगारा तुम्हारे ले आऊं या आग के पास से कुछ मंजिल पता चल जाए। आजकल हम कितने खुशकिस्मत होते हैं कि बेहतरीन एयर कंडीशन कारों में घूमते हैं, उन अंबिया पे सलाम जो इतनी मुश्किलात के साथ सफ़र करते थे और भटक जाते थे, उन पर सलाम, इसीलिए अल्लाह ताला ने उनकी मंजिल पहचान को उनको पैगंबरी दी थी, हम उनके गुलाम बन जाए बहुत बड़ी बात है, इस तरीके से उन्होंने मुश्किलात उठाई हैं। तो क्या कहा बेगम से कि तुम मैं कुछ ले गया हूँ अंगारा ताकि तुम तापो, सर्दी है, रात है, भटक गए, या वहाँ अगर आग के पास कोई बैठा होगा तो मैं उसे रास्ता पूछूंगा, भाई रास्ता किधर है, तुम मूसा गए थे काय के लिए गए थे, मूसा तफसीर बड़ी खूबसूरत बात कहती है, मूसा गए थे खुद का रास्ता ढूंढने, अल्लाह ने पैगंबर बना के दूसरों रास्ता दिखाया, हालांकि छोटे मकसद के लिए गए थे लेकिन अल्लाह इंतजार कर रहा था उनका कि आओ मूसा मैं तुम्हें ऐसा बनाऊंगा ताकि तुम दुनिया को रास्ता दिखा दो, आज तक मूसा रास्ता दिखा रहे हैं। सलाम है मूसा अलैहि सलाम पर, अल्लाह ने कुरान में सलाम करा मूसा अलैहि सलाम पर, हम सलाम करते मूसा अलैहि सलाम को, कितने किस्मत वाले थे, हसद जायज नहीं लेकिन रश्क इस्लाम में जायज है, रश्क करो, मूसा अलैहि सलाम कहाँ पहुंच गए, हम किधर हैं, या करीम या करीम, मूसा के सदक़े में आले मोहम्मद सदक़े में हमको भी कुछ दे दे। फलम्मा आता हो आता है नूदी या मूसा इन्नी अना रब्बुका फ़क़ला अलैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दसी तुआ, जब आग के करीब पहुंचे तो आवाज आई है मूसा मैं ही तुम्हारा रब हूं, तुम अपने जूतियां उतार दो, तुम तो तवा के मुकद्दस वादी में हो, या करीम, लॉटरी खुल गई मूसा अलैहिस्सलाम के, या करीम, मूसा अलैहिस्सलाम पर लाखों सलाम हो, हमारे सरकार पर लाखों सलाम हो, अहले बैत पर लाखों सलाम हो। फलम्मा आता हूँ नूदिया या मूसा, जब वहाँ पहुँचे तो आवाज़ आई या मूसा या करीम या मूसा इन्नी अना रब्बुका, बेशक मैं ही तुम्हारा रब हूँ, फ़क़ला नालिक जूतियाँ उतार दो, इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुआ, तुम बेशक तुआ की मुक़द्दस वादी में मौजूद हो, या करीम, क्या मंजर होगा, आगा सोचे हैं आप, रात का वक्त है, आग के पास जा रहे हैं, आवाज आई इन्नी अना रब्बुका, हम लोग अल्लाह को पुकारते हैं, हम लोग 24 घंटे अल्लाह पुकारते हैं, लेकिन मूसा कितने किस्मत वाले थे, कहा कि इन्नी अना रब्बुका, मैं ही तुम्हारा रब हूँ, फ़क़ला नालिक अपनी जूतियाँ उतार दो, इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुआ, तुम बेशक तुआ की पाक वादी में हो। तो इससे मुराद ये है कि जब भी हम किसी पाक जगह जाएं तो अपनी जूतियाँ उतारें, इसीलिए हम जब मस्जिद जाते हैं हमको जूतियाँ उतारना पड़ती हैं, किसी भी मुकद्दस मुकाम की ये निशानी है कि आप अपनी जूतियाँ उतारें, आप जूतियाँ उतारें। तो बाज ने कहा है कि अहदीस में कि जूतियों से मुराद ये थी कि मूसा अलैहिस्सलाम को दो फिक्रें लगी हुई थी उस वक्त, दुनिया की दो फिक्रें लगी हुई थी, एक तो फिक्र ये लगी थी कि उनकी बीवी हामला है परेशान थे रात में, एक वो जूती थी दिमाग में उस वक्त फिरौन से मुकाबला करना, तो अल्लाह सुब्हान अल्लाह ने कहा कि अब तुम मेरे पास हो गए, सब दुनिया भूल जाओ तुम मूसा, अब तुम मेरे हो गए, अब तुम तो खुश हो जाओ, अब मैं तो तुम्हें मिल गया ना, अब तुम किन चक्करों पड़े हो, तुम मुझे ढूंढ रहे थे ना। हमारा हदफ क्या जिंदगी का आका साहब, हमारा हदफ ही हम अल्लाह से मिल जाए बस। हर एक का रूह क्या चाहती है, अल्लाह चाहती है, रूह को कुछ नहीं। पेट को क्या चाहिए, खाना चाहिए, है ना, पेट को चाहिए खाना चाहिए, रूह क्या चाहिए, अल्लाह चाहिए। जब रूह जब अल्लाह मिल जाए तो उससे बड़ा कोई खुशी नहीं होती। तो कहा कि अब मूसा तुम्हारी दुनिया छोड़ दो, अब तुम तो रब के सामने खड़े हो, जिसकी के अल्लाह रब ने बताया ना मैं क्या क्या करता हूँ। अभी ताहो पढ़ लिया कि रब की हुकूमत और क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, मैं तुम्हारा रब हूँ, अब तुम सब भूल जाओ। करीम करीम तू भी हमें अंबिया के रास्ते पे चला, ताकि हम जब तेरी इबादत करें तो हम अपनी जूतियाँ उतार के आकर मस्जिद में, जब हम तेरे मस्जिद में आए हमारी जूतियाँ ना दुनिया को हम छोड़ के आए, जब तेरे सामने खड़े हो और नमाज पढ़े, शैतान के वसवसों से हम नमाज में दुनिया भर की फिक्रें आती हैं, अल्लाह करीम हटा दे फिक्र हमारे दिमाग से और सिर्फ तेरे तरफ हमको तू रुजू कर, अगर तू रुजू नहीं करेगा तो हम नहीं रुजू हो सकते। सुभानअल्लाह, क्या किस्मत खोली मूसा की, मैंने तुमको मुंतखब कर लिया है, लिहाजा जो वही की जा रही है उसे गौर से सुनो। पैगंबरी के लिए अल्लाह खुद मुंतखब करता है। मूसा अलैहिस्सलाम का दिल कितना पाक होगा, कितना पाक कल था उनका, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का मैंने तुम्हें मुंतखब करा है, तो तुम ध्यान से सुनो जो वही की जाती है, तुम उसको सुनो। हमको शुक्र ये करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमको मुसलमान घर में पैदा करा है, शुक्र करना चाहिए कि हमको मौला अली की विलायत दी है, शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमको ये मंजिलत दी है कि हमको सरकार की उम्मत में पैदा करा आखिरी जमाने में, शुक्र ये करना चाहिए कि इमाम जमान के हम अल्लाह ताला ने हमको उनके अल्लाह करीब हमको उनके साथियों में शुमार करे, तो हमको क्या चाहिए फिर। फस्तनो मायूहा, तो सुनो जो उसने वही करी है। तो क्या सुनो है? हम कुरान सुने ना भाई। अब आप मुझे बता दें, आप मुझे बता दें, सच्चे दिल से बता दें कि जो मूसा अलैहिस्सलाम पे युहा हुआ था उन्होंने सुना, आप पे क्या वही हुई है? आप पे तो कुरान की वही हुई ना, आप पे तो कुरान की वही हुई ना, कौन सी वही बड़ी थी? क्या इसलिए हदीस है सरकार की, क्या हदीस है? मेरे बाद उलमा जो होंगे उनका मुकाम बनी इसराइल के पैगंबरों जो आला पैगंबरों से बड़ा होगा, कि उन फस्ते में मायूहा करा उन्होंने सुनी। अब आप बोले जो मर्जे तकलीद है, उन्होंने क्या क्या नहीं, कुरान को जज्ब करा अपने कल पे, कैसे कुरान को जज्ब करा अपने कल पे, किस तरीके से शरीयत के की शरीयत के जरिए उम्मत की हिदायत करी और रहबरियत करी, इनके क्या दर्जात हैं, क्या दर्जा था, उनसे पूछो उन लोग जाके उलमा हो सके, आपको जो दर्जा मिला है आपको ये अच्छा लगता है या कुछ और मिलता, तो कहते हैं इससे बड़ा कोई नहीं, कुछ इससे बड़ी कोई खिदमत नहीं चाहिए थी, इससे बड़ी कोई खिदमत नहीं चाहिए थी। आप ये पूछ ले आप, जो आने वाले अंबिया, इलियास आने वाले, इदरीस आने वाले, ईसा अलैहिस्सलाम आने वाले, सब आने वाले ना, खजर आने वाले, पूछेगा आपको कैसा लगेगा जब इमाम अहमद साहब आके आएंगे यहाँ पर, जब वो अपनी जो बताएंगे अपनी रहबरियत, आप उनके पीछे चलेंगे, आपको कैसा लगेगा, क्या जवाब मिलेगा? कि इससे कोई खुशी की बात नहीं, इंतजार में सब, तो हमको तो इमाम अल्लाह ने दिए है ना, तो हम क्यों नहीं उनकी इमामत में उनके पीछे चलें और इस युहा को कुरान को सुने, ताकि हम खुश हो जाए। इन्नी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअबुदुनी वाकिम सलाती लिज़िक्री, यकीनन मैं ही अल्लाह हूं, नहीं है कोई माबूद सिवाय मेरे, तुम सिर्फ मेरी बंदगी करो और मुझे याद रखने के लिए नमाज कायम करो। अल्लाह कैसे आप सोच रहे हैं जब मूसा अलैहिस्सलाम खड़े होंगे और जब आवाज आ रही इन्नी अनल्लाह, मैं ही खुदा हूं, दुनिया खुदा को ढूंढती फिरती है, और सलाम मूसा पे कि अल्लाह ताला की आवाज आ रही है, यह आयत अगर आदमी सुन ले तो पागल हो जाए खुशी में। इन्नी अनल्लाह, सोचे आप, इन्नी अनल्लाह, आप सोचे कि क्या मंजिल थी मूसा की, जो अल्लाह का इन्नी अनल्लाह खड़ा, अल्लाह सामने है, कायनात का मालिक, आपका खालिक, इन्नी अनल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई खुदा नहीं है, इल्ला फाबुदुनी, इसलिए तुम मेरी इबादत करो, फाबुदुनी, मर जा परवरदिगार तेरी इबादत करने के लिए, फाबुदुनी, मर जा तेरी इबादत करने के लिए, वाकिम सलात जिक्री, और मेरा जिक्र के लिए मेरे जिक्र के लिए नमाज को कायम करो। जिक्र मेरा है, इबादत मेरी है, लेकिन तुम कैसे करोगे? नमाज कायम करके होगी, वरना नहीं होगी। वो अल्लाह ताला ने जो बताया है नमाज की मंजिल बता दी इस आयत में, इस आयत ने नमाज की मंजिल बताया कि तुमको जिक्र तो मेरा करना, कैसे करोगे? नमाज कायम करके करो, जिक्र नमाज कायम करो, जिक्र हो जाएगा मेरा। इसलिए इस आयत के जेल में मासूम फरमाते हैं मोहम्मद बाकर सलाम, इमाम मोहम्मद बाकर सलाम के, इसका मतलब यह है कि जब भी तुम याद करो कि तुमको नमाज पढ़ना है, वक्त हो या ना हो उसको फौरन पढ़ लो। वक्त हो या नहीं हो, जैसी नमाज याद आ कि नमाज पढ़ना है, वक्त हो या ना हो मतलब फौरन पढ़ लो। मतलब क्या हुआ, अगर आप की नींद लग गई और आप उठे मालूम पढ़ा ना, नमाज का टाइम निकल गया, फौरन नमाज पढ़े आप। पहला काम है नमाज पढ़े आप, नमाज पढ़ना उसी वक्त पहला काम अगर नमाज पढ़ा। इसीलिए कहा गया कि अव्वल वक्त नमाज पढ़ा करा करो। अव्वल वक्त नमाज पढ़ोगे तो नमाज खुश होगी, आपके लिए दुआएं देगी। अगर नमाज को आपने ताखिर से पढ़ा तो नमाज आपके लिए आपके लिए बद्दुआ देगी जाती कि इसने मेरी ताखिर करी है। इसलिए नमाज दीन का वो सुतून है कि नमाज कबूल तो हर अमल कबूल, नमाज कबूल नहीं तो कोई अमल कबूल नहीं। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने जो मूसा अलैहि सलाम से पहली बात जो करी नमाज की बात करी, जब नमाज का जिक्र आता है, इबादत का जिक्र आता है और अल्लाह के जिक्र का याद आता है तो इमाम हुसैन की याद आती है कि जिस तरीके से इमाम हुसैन इबादत करी, हिलाल बेज इबादत करके चले गए, चौथे इमाम ने जो अल्लाह की इबादत करी, जो अल्लाह का जिक्र करा, जो कुरान पढ़ा, उसकी मिसाल कायनात में बिल्कुल नजर नहीं आती। वो दस मुहर्रम का दिन, उस दस मुहर्रम की मुसीबतें, वो दस मुहर्रम की परेशानियां, वो तकालीफ, वो आजमाइशें हम देखते हैं, हम मुहर्रम में सुनते हैं किस तरह की मुश्किलात थी। उन मुश्किलात के अंदर इमाम हुसैन ने जिस तरीके से अल्लाह को याद करा और जिस तरीके से उसको सजदा करा, एक तरफ मूसा अलैहिस्सलाम थे जब अल्लाह से मिल रहे थे उस अंधेरे में उनके अपनी जोजा के साथ, तो अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा कि अपनी जूतियां बाहर रख के आओ, यानी अपनी परेशानी को तुम बाहर रख के आओ, मूसा तुम मुझसे मिल रहे हो। वहीं अपन देखते हैं फख्र मूसा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब असर का सजदा कर रहे थे, जब सजदा कर रहे थे तो उन्होंने सजदे के वक्त ये नहीं देखा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे अहल के साथ क्या होगा, मेरे भाई के साथ क्या हुआ, मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ, आगे क्या होगा, बस मौला ने सजदा कर दिया, खाली सजदा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।